और वो उसी इंस्ट्रक्शन को आपको उनका पर मिलता है। पूछने वाले ने इतना तो क्लियर किया है, फिर ये हमें फल कौन देता है, फिर ये क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। हमारे कर्म हमें अच्छा बुरा फल देते हैं। जो लोग आते जाएं वहीं पीछे, आज प्लीज कम से कम आज मेरी क्लास है आज, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करें। तो ये समझ रहे थे अपन कि जब कर्म हमें अपना अच्छा बुरा फल देते हैं, तब जो है कौन फल देता है ये प्रश्न नहीं उठेगा। एक माइथोलॉजी ऐसी भी है, एक मिथ ऐसा भी है जो ये मानता है कि कर्म के अनुसार हमारा फल मिलता है, लेकिन ईश्वर फल देता है, अच्छा बुरा फल वो देता है। हम जो अच्छा बुरा करते हैं ना, तो वो भगवान के खाते में पहले जाता है और फिर वो अच्छे का अच्छा फल और बुरे का बुरे फल देता है, भगवान देता है। मतलब बीच में उसका भी रोल है। हमारे अपने कर्मों का जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है उसे वैसा फल भगवान देता है, वो कर्म नहीं देता। जबकि हमारे यहाँ पर ये है कि नहीं, जो हम कर्म करते हैं वही कर्म हमें वो वैसा फल देता है, क्योंकि अच्छे का फल अच्छा मिलेगा, बुरे का फल बुरा। अब इसमें किसी दूसरे की आवश्यकता क्या? जैसे कि आग में हम हाथ डालेंगे तो वो जलेगा, हमें आग में हाथ डालने का फल क्या मिलेगा कि हमारा हाथ जल जाएगा। अब इसमें किसी भगवान की आवश्यकता क्या है कि जब हम हाथ में जब तो उसमें आग में हाथ डालेंगे तो फिर भगवान सोचेगा कि इसको कितना फल देना है, कितना जलाना है, बड़ा आदमी है कि छोटा आदमी है कि बच्चा है, माफ कर देना। ये कुछ नहीं चलेगा,
स्वतः मिलेगा।
ये हम जैसा कृत्य करेंगे उसका अल्टीमेटली फ्रूटेशन उसका वैसे ही होगा। हमने बबूल बोया होगा तो फ्रूटेशन ये होगा कि कांटे लगेंगे, हमने आम बोया होगा तो फ्रूटेशन ये होगा कि हमें मीठा फल लगेगा
ऑटोमेटिकली।
हाँ, ये हमारे पहला
मॉडिफिकेशन हो सकता
है उसको, वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो भी हमारे, उसमें भी किसी का रोल नहीं है, है ना। कोई एक्स्ट्रा पर्सन नहीं, एक्स्ट्रा पर्सनालिटी नहीं है जो कि इसको मैनेज करती हो। एक चीज, अगर हम खुद ये फल अपने आप को देते हैं, देखना, तो फिर हम ही, तो फिर हम तो सिर्फ आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही निर्णय करती है। और अगर आत्मा ही निर्णय करती तो फिर आदमी को वो बुरे कर्म क्यों कराती है? यही मजा है। व्यक्ति जानता है कि बुरे का फल उसे बुरा मिलेगा, अच्छे का फल अच्छा मिलेगा, इसके बावजूद भी उसके पुराने संस्कार उसे मजबूर कर देते हैं कि वो वैसा ही करता है। सीधा सा इसका गणित है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। हमारी आत्मा इतनी कहना चाहिए पतित हो चुकी है, इतनी अधिक बुरे संस्कारों से ग्रसित हो चुकी है कि जब भी वो अच्छा करनी चाहती है तो अच्छे की जगह पर वो गलत कर चुकी है, फिर बाद में पछताती है वो कि मैंने ऐसा क्यों करा। अपनी ही आत्मा, कोई दूसरा नहीं उसमें। तो हम क्या माने इस चीज को कि जो भी हम करते हैं उसके लिए जिम्मेदार हम हैं? इसका सीधा अर्थ यह है कि उसका फल हम ही को भोगना पड़ेगा। तीन चीजें हैं, कर्म हम करते हैं, कर्म हमारे साथ बंधते हैं, कर्म का फल हम भोगते हैं। इसमें चौथे नंबर कोई भी चीज नहीं है, चौथा कोई भी नहीं है जिसका रोल हो। हम ही करते हैं, हम ही बंध जाते हैं और हम ही फिर उसका फल भोगते हैं। हमने टेप रिकॉर्ड रखा है, हम जो बोलेंगे, हम गाली भरना चाहेंगे गाली भर जाएगी, हम अच्छे शब्द भरना चाहेंगे अच्छे, फिर हम मजबूर हैं कि हमें वैसे ही सुनना पड़ेंगे। वो बंध गए हैं, ये जो टेप हो गया ये बंधना हो गया, जो हमने बोले हैं वो हमारा करना हो गया। अब जब ये रिवाइज होगा टेप और फिर बजेगा तो हमको सुनना पड़ेगा, करें ये गाली क्यों आ रही टेप में से, तो आपने जैसा करा था वो डिपॉजिट हो गया। ऐसे ही जो हम करते हैं वो हमारे साथ बंध जाता है और वही फिर जब रोटेशन देता है तो हमें उसका फल भोगना पड़ता है। आत्मा ही इन तीनों चीजों में जिम्मेदार है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आर यू सेटिस्फाइड? पर इनका सोचना ये है कि जब हम खुद ही अपने आप को फल देते हैं, जब हम ही खुद करते हैं, तो हम ऐसा क्यों फल देते हैं अपने को बुरा? तो हम मजबूर हो जाते हैं, हम बुरा करके मजबूर हो जाते हैं खुद अपने को बुरा फल भोगने के लिए। इसलिए तो एक जगह लिखा है कि करो जैसा करना हो वैसा करो, लेकिन बुरे का फल बुरा मिलता है, ये उसकी शक्ति रखो भोगने की। अगर पाप करते हो तो पाप के भोगने की शक्ति भी रखो अपने पास, क्योंकि तुम्ही को भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगे। आत्मा को ये इशारा भी करते हैं, लेकिन आत्मा इसके बाद भी जो है वो अपना कल्याण बहुत रेयर केसेस में करती है। वही तो उपदेश धर्म देता है कि तुम अपने आप को संभाल लो, क्योंकि कोई दूसरा तो है नहीं संभालने वाला, और खुद ही तुम्हें अपने को संभालना पड़ेगा। तुम अपने को काय को बिठा रहे हो इस तरह। तो जब सचेत हो जाती है तो सबल हो जाती है कि ठीक है, हमने अपने को नहीं पतित नहीं होने देंगे, हमें अपने को पावन बनाना। ये आत्मा की ही शक्ति है। हमारे कर्मों पर, हमारे संपूर्ण जीवन पर ग्रहों का असर किस प्रकार पड़ता है, ये बिल्कुल जुदी चीज हो गई। जब भी हम इम्प्योर स्टेज में होते हैं, जब भी हम कर्मों से युक्त होते हैं, तब हमारे ऊपर सब चीजों का प्रभाव पड़ता है, छोटी बड़ी हर चीज का प्रभाव पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसका आपके ऊपर असर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपके प्रश्न का मेरे ऊपर असर हुआ तब तो मैंने जवाब दिया, तो असर हो रहा है। उधर बाहर थोड़ा सा शोरगुल हो जाए, एक बच्चा यहीं पर हल्ला करने लगे, तो उसका असर होगा अपने ऊपर कि नहीं? हो सकता है कि अपन को किसी को ये लगे कि देखो ये माँ कैसी है या क्यों ले आई, दूसरा कहेगा निकालो बाहर इसको, कौन है ये? क्रोध उसी ने, उसी एक घटना से उसने एक ने क्रोध कर लिया, एक ने ये सोचा कि देखो तो कैसा संसार है, एक माँ जो है बच्चे के पीछे अपना धर्म छोड़ती है, फिर ये बच्चा बड़ा होकर के उसकी मदद भी नहीं करता, उसने संसार का चिंतन कर लिया। एक ही चीज किस तरह अफेक्ट करेगी व्यक्ति को, एक ही स्टार अलग अलग जितने भी आत्माएं हैं सब पर अपना एक सा असर डालेगी, लेकिन वो आत्माएं किस क्वालिटी की हैं वैसा उनके ऊपर उसका असर पड़ेगा। देखिएगा एक ही आवाज, एक नॉइस हो यहाँ पर, एक ही नॉइस को कितने लोग यहाँ जितने बैठे उनके मन में उतने तरह के विचार है, सब आप अपने अपने एक एक जैसा सोच दो का नहीं हो सकता। इसी तरह ये उन्हीं नक्षत्रों से हमारा जन्म होना निश्चित क्यों होता है? वे नक्षत्र तो सिर्फ एक माध्यम बनते हैं हमारे अपने नेचर को कहना चाहिए क्लैरिफाई करने के लिए कि हमारा नेचर भी ऐसा है, क्योंकि हम उस नक्षत्र में पैदा हुए हैं जिस नक्षत्र के अनुसार ऐसा नेचर होना चाहिए। आत्मा पहले से अपना नेचर डिसाइड करती है, नक्षत्र हमारा नेचर डिसाइड नहीं करते हैं। आत्मा ने अपना नेचर पहले अपने कर्मों के द्वारा डिसाइड कर लिया है, अब वो वैसे सर्कमस्टेंसेस ढूंढता है कि वैसी परिस्थितियां होनी चाहिए जिसमें कि वो वर्ण करे, वो अपने को पैदा करे।
शुभ कर्मों से जो ग्रह का इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, दैट कैन न्यूट्रलाइज्ड।
देखिए ना, ज्यादा दूर काहे को जाना है, हमारे अंदर अच्छा भाव होगा और कोई हमें गाली भी देगा तो ज्यादा असर नहीं करेगा। देखिए और हमारे अंदर कोई बुरा भाव चल रहा है और कोई जरा मीठी बात भी कहे तब भी ऐसा लगेगा क्या अभी मेरे इतनी तकलीफ में हूँ तो मैं अपना ये सब कुछ आ रहा है, हमें अच्छा नहीं लगेगा। जाओ देखो आप इतनी अच्छी बात भी कही थी पर आप दुख में थे, उसकी अच्छी बात को भी आपने इस तरह ले लिया, और एक व्यक्ति जो है बहुत शांत पवित्र बैठा हुआ था उसको चार लोग गाली दे के चले गए। आत्मा की क्वालिटी मतलब यही है कि वो आत्मा किस तरह की सोच वाली है, कैसे संस्कार वाली है, आत्मा की क्वालिटी से मतलब ये। एक प्लीज एक चीज ध्यान रखिएगा कि ABCD पढ़ रहे हैं, ऊंची ऊंची वाली कक्षा का नहीं पूछ लेना। योनि बंद कैसे, कब, क्यों और कौन करता है? योनि से मतलब हुआ आपका आयु बंद से, मेरे ख्याल से आगे आगामी आयु किस योनि में, 84 लाख योनियों में से किस योनि में जाना है ना, यही ना। तो मतलब अपन ऐसा माने कि चार गतियों में से कौन सी गति में जाना है या कि कौन सी आयु में जाना है, ये कैसे कब और क्यों, ये बिल्कुल अलग इसकी चर्चा है। वो अपन 7 कर्मों से अलग है, इसकी चर्चा अपने को करनी है, वो अभी करते हैं। आयु कर्म की निर्जरा का अर्थ क्या है? कर्म का अपना फल दे करके झड़ जाना, इसका नाम निर्जरा है। जैसे कि आम लगता है पक करके नीचे आम गिर जाता है, ठीक इसी तरह कर्म हमारे आते हैं वो पकते हैं अपना फल देते हैं वो झड़ जाते हैं, इसका नाम निर्जरा है। 2 तरह से होती है, एक अपने समय पर निर्जरा होती है, एक असमय में निर्जरा होती है, जो हम अपने तप के द्वारा कर लेते हैं उसको अल्पाक निर्जरा कहते हैं, जो अपने समय पर निर्जरा होती है उसको सविपाक निर्जरा कहते हैं। ये निर्जरा के 2। नरक गति का बंद कब होता है? जब हम बहुत अधिक आरंभ और परिग्रह करते हैं, जब हमारी ग्रीडीनेस, जब हमारा पजेशनेस बहुत होता है और बहुत पाप क्रिया करते हैं, बहुत अधिक कषाय करते हैं, तब नरक आयु का बंद। वो कोई भी क्षण हो सकता है हमारे जीवन का, कोई भी क्षण हो सकता है जिस क्षण हमारे अंदर वो चीज हो जाए। और एक बार अगर आयु का बंद हो गया तो चेंज नहीं, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप नरक से मनुष्य नहीं कर सकते, मनुष्य से देव नहीं कर सकते, देव से तिरंज नहीं कर सकते। एक बार आयु बंद हो गया फिर उसी तरह उसमें इजाफा हो सकता है कि ठीक है साथ में नरक की बांधी थी तो आप इम्प्रूव करके पहले नरक तक कर लीजिएगा, लेकिन जाना पड़ेगा नहीं। ये आयु बंद का बिल्कुल एकदम अलग है, 7 कर्म हमेशा बनते रहते हैं, आयु कर्म हमारा बिल्कुल अलग है। अब देखिएगा आपने जो पढ़ा है उसमें से कुछ आप महाराज जी आहार ले रहे होंगे और श्रावक और श्राविका उनको आहार दे रहे होंगे, उस समय वहाँ का जो राजा होगा वो आकर के उनसे टैक्स मांगेगा कि आप ऐसे फोकट में कैसे खा रहे हैं, टैक्स भरिएगा सरकार से। तो बस इतना उनको कहने से अंतराय मान लेंगे कि हमारे हमें ग्रास थोड़ी दे सकते हैं, ग्रास दिया तो अंतराय हो गया, तो उसको अंतराय मान उसी समय उनका अवधि ज्ञान होगा और वो जान लेंगे कि अरे ये अंतिम कल की पैदा हो गया है। कल की मतलब ऐसा राजा जो धर्म का नाश करता है, उसको बोलते कल की, एक ऐसा राजा जो कि धर्म के नाश के लिए उत्पन्न होता है और हर 1000 साल के बाद पैदा होता है। वो आखिरी कल की 21000 साल पूरे पंचम काल के होने पर पैदा होता, 3 दिन शेष रह गए वो जान लेंगे अपनी आयु इतनी शेष रह गई और वो 4 दिन संलेखना ले लेंगे, उसके बाद धर्म खत्म हो। सूर्य और चंद्रमा धीरे धीरे प्रकाश देना बंद कर देंगे, मनुष्य की आयु तब वहां तक पहुंचते पहुंचते 20 वर्ष हो जाएगी मैक्सिमम और 1 फीट की हाइट रह जाएगी। मनुष्य फिर घर नहीं बनाएगा, बिल में रहेगा, नीचे मिट्टी खाएगा। ये छठे काल की स्थिति, मिट्टी खाएगा, ये छठे काल की स्थिति बनेगी। पूरे छठे काल में धीरे धीरे और डिक्रीज होते 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 छठे काल के अंत तक जो है पूरा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और 49 दिन तक वृष्टियां होंगी जिनमें की पूरी पृथ्वी जो है जल आग अग्नि वायु तत्व सेफ रह जाएंगे, कुछ थोड़े बाहर के जोड़े सेफ रह जाएंगे और जो छोटे मोटे जीव हैं पशु हैं कुछ बचा लिए जाएंगे, अभी सब खत्म हो जाएगा। फिर 49 दिन तक अच्छी वृष्टियाँ होंगी, अच्छी वृष्टि होने पर फिर खुशहाली होगी पृथ्वी पर, फिर सूर्य चंद्र दिखना शुरू होंगे, फिर धीरे से वो सब 72 जोड़े बाहर निकल आएंगे, फिर अपनी लाइफ शुरू करेंगे, फिर धर्म की शुरुआत, वो भी नहीं होगी धर्म की शुरुआत, सिर्फ कर्म करना शुरू करेंगे। छठा काल फिर से इम्प्रूव करेगा, फिर 5वां काल के लास्ट तक पहुँचेंगे, फिर तीर्थंकर पैदा,
वो रिवर्स में आएगा।
अच्छा अच्छा, ये काल परिवर्तन है, साइकिल है। अपन ने 4 कर्मों के बारे में समझ लिया, कर्म अपना किस तरह से फल देते हैं, उनका फ्रूटेशन कोई भी कर्म। और एक चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि जैसा फल हम लेना चाहें वैसा फल ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर, हम कर्म का अच्छा बुरा फल ले सकते हैं, लेकिन हमें सजग रहना पड़ता है। जब हमें कर्म का बुरा फल मिले तो हम ये मान करके चले कि ये हमारे द्वारा किया हुआ कर्म ही है, लेकिन कोई कर्म का हमें बुरा फल मिलेगी ये निश्चित नहीं है, क्योंकि धर्म क्षेत्र काल बदल करके समता पूर्वक उस कर्म को झेल करके हम उसे निष्क्रिय बना सकते हैं। कोई कर्म किसी ने हमने कहा कि किसी ने हमें क्रोध करने वाली बात कही, हमने करा तो हमारे हाथ में, नहीं करना चाहे तो कोई जबरदस्ती थोड़ी कि हम क्रोध करें, आप हमें क्रोध नहीं दिला सकते, ये हमारे हाथ की चीज है। कर्म अपना फल देने आया है कि वो हमें गुस्सा करवा के जाए, ये कोई जरूरी नहीं। हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी झुंझलाट आएगी लेकिन हम शांति में रहते हैं, समता परिणाम हम रख करके कर्मों को न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं और हम अपने असाता के उदय में और संक्लेश करके कर्म को उदीर्ण करके ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, हम उसको कम करके भी फल ले सकते हैं, तो अपन पढ़ चुके हैं इस तरह का। तो 4 कर्म के बारे में पहला ज्ञानावरण, ज्ञान को ढकने वाला, उसके 5 भेद हैं। एक इंद्रिय ज्ञान है, वो हमारा ढक लेता है, वो मति ज्ञानावरण कहलाता है। इंद्रिय और मन के द्वारा होने वाले ज्ञान को जो ढक ले वो मति ज्ञान कहलाता है। जितना जितना हमारा खुलता है आवरण उतना उतना जान लेते हैं हम, इंद्रियों के द्वारा थोड़ा सा विषय जान लेते हैं, अब इसके उस तरफ क्या है, हमारे पास इंद्रिया होने के बाद भी कहाँ जान सकते हैं, तो एक लिमिट है इंद्रियों की उतना। फिर इंद्रिय ज्ञान के द्वारा जो हम जानते हैं उसके बारे में विशेष जानने वाला भी एक ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। उस शुद्ध ज्ञान को ढकने वाला भी एक आवरण है, वो शुद्ध ज्ञानावरण है। एक इंद्रिय और मन के बिना भी एक ज्ञान होता है, वो अवधि ज्ञान कहलाता है, उसको ढकने वाला एक आवरण है, अवधि ज्ञानावरण। एक और दूसरे के मन में स्थित बात को जानने वाला ज्ञान है, वो मन है परे ज्ञान कहलाता है, उसको ढकने वाला एक कर्म है। एक ज्ञान ऐसा है जिसमें कि हम बिना इंद्रिय और मन की सहायता के और 4 कर्मों का नाश करके उसको प्राप्त करते हैं, जिससे कि लोक के चराचर समस्त पदार्थ एक साथ दर्पण के समक्ष समान उसमें झलक जाते हैं, वो केवल ज्ञान कहलाता है, उसको आवरण करने वाला भी एक कर्म है। केवल ज्ञान को आवरण करने वाला जो कर्म है वो पूरा का पूरा आवृत करता है, उसे जरा भी प्रकट नहीं होने देता, लेकिन बाकी जो 4 ज्ञान है उनका आवरण थोड़ा सा खुलता है तो थोड़ा सा हमें वो ज्ञान प्राप्त हो जाता। केवल ज्ञान का आवरण जब भी हटता है तो पूरा हटता है, थोड़ा सा नहीं हटता कि थोड़ा हट गया तो थोड़ा केवल ज्ञान हो गया, नहीं, वो जब हटेगा तो पूरा ही हटेगा। बाकी 4 ज्ञानों पर आवरण थोड़ा सा हटता है तो वो ज्ञान में हो सकता है। ये तो क्या दर्शनावरण में 5 तो निद्राएं हैं और 4 जो है आँख से हमें देखने की क्षमता मिली है, उस पर कोई आवरण डल जाए तो चक्षु दर्शनावरण कहना है। हमें 4 आँख के अलावा 4 इंद्रिय मिली है, हम छू करके देख सकते हैं, हम सुन करके देख सकते हैं, सूंघ करके देख सकते हैं, चख करके देख सकते हैं, इन पर भी आवरण डालने वाले कर्म है, अचक्षु दर्शनावरण है। चक्षु के अलावा 4 इंद्रियों पर जो आवरण डालने वाला कर्म है वो अचक्षु दर्शनावरण है। एक जो हमारा अवधि ज्ञान होता है, जो मन और इंद्रिय के अलावा जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान से पहले जो जनरल ऑब्जर्वेशन होता है, दर्शन बोलते हैं जनरल ऑब्जर्वेशन को, सामान्य अवलोकन का नाम, तो उस दर्शन को ढकने वाला भी एक कर्म है, वो अवधि दर्शनावरण है और एक केवल दर्शनावरण है। केवल ज्ञान के पहले जो ऑब्जर्वेशन की शक्ति हमारे अंदर रहती उसको ढक लेता है, वो केवल दर्शनावरण। इस तरह से चार ये हो गए। और निद्रा को तो स्लीप बोलेंगे, और निद्रा को डीप स्लीप बोलेंगे, प्रचला को ड्रॉसीनेस बोलेंगे और डीप ड्रॉसीनेस बोलेंगे, और सोमनेबोलिज्म कहलाती है स्थान वृद्धि, जिसमें कि हम सोते सोते और ऐसे कार्य करके आ जाते हैं जो कि असंभव होते हैं और फिर सो जाते हैं और भूल जाते हैं, इतनी प्रकांड निद्रा भी होती है। तो ये पांचवा था दर्शनावरणी कर्म है। फिर इसके बाद वेदनी कर्म पढ़ा था अपन ने, एक जिससे कि हमें सुख का वेदन होता है, जिस कर्म के उदय में वो साता वेदनी है, जिस कर्म के उदय में हम दुख का वेदन करते हैं वो असाता वेदनी है। मोहिनी कर्म का बहुत बड़ा परिवार है, उसके दो डिवाइडेशन कर देते हैं, एक हमारी श्रद्धा को ढकने वाला कर्म है वो दर्शन मोहिनी कहलाता है, एक हमारे आचरण को अपवित्र करने वाला या नहीं होने देने वाला कर्म है वो कहलाता है चारित्र मोहिनी। ठीक है ना, दर्शन मोहिनी में भी तीन है, जो हमारे पूरे श्रद्धा को ढक लेता है वो कहलाता है मिथ्या, और जो हमारी श्रद्धा को तो नहीं ढकता लेकिन उसमें थोड़ा दोष लगाता है वो सम्यक कहलाता है, और जो हमारी श्रद्धा को और अश्रद्धा को दोनों मिली जुली स्थिति को बनाता है वो सम्यक मिथ्या। ये समझ लीजिएगा, इनकी डेफिनेशन तो फिर अपन इसमें से लिख लेंगे, पर समझने के लिए कि इतने भी ऐसे भी कर्म होते हैं। और ये तो तीन हो गए दर्शन मोहिनी कर्म के। चारित्र मोहिनी में कषाय हैं जो अपन करते हैं, एक कषाय ऐसी है इतनी तीव्र है कि जो हमें सम्यक दर्शन हमारी श्रद्धा में बाधक बनती है। एक दर्शन मोहिनी तो बनती ही श्रद्धा में बाधक, लेकिन एक चारित्र मोहिनी की भी एक ऐसी स्थिति है अनंतानुबंधी जिसको अपन बोलते हैं कषाय, वो कषाय हमारे आचरण को भी नहीं होने देती और हमारी श्रद्धा को भी नहीं होने देती। डुअलिस्टिक नेचर है उसका, दो तरह का स्वभाव उसका। तो जो हमारे सम्यक दर्शन को ना होने दे वो कहलाएगी सम्यक दर्शन, और चारित्र दोनों को ना होने दे वो कहलाएगी अनंतानुबंधी। जो हमारे आपके देश चारित्र को मतलब अनुव्रतों को ना होने दे वो कहलाएगी अप्रत्याख्यान। जो हमें महाव्रत ना लेने दे वो कहलाएगी प्रत्याख्यान। जो हमें जो हमारा ओरिजिनल चारित्र है यथाख्याप उस चारित्र को ना होने दे वो कहलाती संजनन कषाय। क्योंकि हमने बनाई परिभाषा यही है कि जो चारित्र को ढके चारित्र ना होने दे व्रत नियम संयम ना लेने दे, तो ये चारों कषाएं हैं। इनके चार चार भेद होते हैं तो 16 भेद हो जाते हैं, 16 तो चारित्र मोहिनी यही हो गए। फिर एक सूडो पैशन भी होती है, तो पैशन है और सूडो पैशन मतलब जो इसके साथ में होती है रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, ये जो है नौ कषाय कहलाती है। इसको पर ईसत कषाय कहते हैं। ये कषाय जैसे अपन हंसते भी हैं तो किसी न किसी कषाय के साथ, क्रोध के साथ, मान के साथ, माया के साथ, किसी लोभ बस भी हंसते हैं तो हंसी हंस भी एक कर्म है। नौ कषाय है वो भी रति किसी स्थान विशेष से हमारा विशेष स्नेह होता, हालांकि वो किसी न किसी कषाय से युक्त होता है। कषाय के साथ ही नौ कषाय अपना काम करते हैं, ये ध्यान रखें, इसलिए उनको अपन लोग कषाय बोलते हैं। सूडो पैशन के नाम वो एक्चुअली पैशन नहीं है लेकिन क्योंकि कषाय के साथ होते हैं इसलिए ऐसे करके 25 भेद ये हो गए थे। एक जनरल पास तो नहीं कर रहा
नहीं
इजीली आ रहा समझ में, फिर आप पढ़ेंगे तो, और ये तो लास्ट में अपने पिछले वक्त की है। अब अपन पढ़ें कि आयु कर्म क्या है। आयु कर्म वो है जो हमें एक निश्चित समय के लिए एक भाव में रोके रखता, एक निश्चित भाव में एक निश्चित समय के लिए रोक रखने वाला कर्म आयु कर्म। ऐसी डेफिनेशन नहीं लिखना, डेफिनेशन दूसरी भावधारणम आयु, ऐसी डेफिनेशन बनेगी जिससे भाव धारण होता है वो आयु कहलाती, पर अपन समझने के लिए कि एक निश्चित समय तक एक निश्चित भाव में रोके रखती जंजीर की तरह वो कहलाती आयु। जैसे गाय को हमने खूंटे से बांध दिया अब बंधी है, ऐसे हमें भी जो है आयु खूंटे से बांध देती है। अब मनुष्य तो मनुष्य रहेगा, 60 साल की आयु मिली है मनुष्य रहना पड़ेगा, नरक में है तो नरक में रहना पड़ेगा। चारों गतियां होती हैं, नरक होती है, देव होती है आयु और मनुष्य आयु होती है तिरंचायु। तिरंचायु में क्या है सब शामिल है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौर इंद्री, पंचेंद्री, पंचेंद्री में संगी, पंचेंद्री पशु इत्यादि सब मनुष्य को छोड़कर, ये सब तिरंच के। तो इस तरह से ये तिरंचायु हो गई, चार आयु होती, ये आयु कर्म हो गए। फिर उसके बाद गोत्र कर्म, स्टेटस हमारा, हमारे आचरण की पवित्रता अपवित्रता, ऐसे कुल में पैदा होना जहाँ की आचरण पवित्र है और ऐसे कुल में पैदा होना जहाँ की आचरण अपवित्र है, जहाँ मद मधुमाउस का सेवन होता है, जहाँ पापकारी बहुत होते हैं, ऐसे में होना तो वो कहलाता है नीच गोत्र। और ऐसे परिवार में पैदा होना जहाँ की हाई स्टेटस है, स्टेटस से मतलब ये नहीं रहना कि बहुत बड़े लोग पैसे वाले हैं, मतलब जिनके आचरण में पवित्रता है, जहाँ पर भगवान के प्रति ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, सच्चे देव गुरु शास्त्र की जहाँ श्रद्धा, ऐसे परिवार में पैदा होना उच्च गोत्र कहलाएगा। नीच गोत्र और उच्च गोत्र, इस तरह से दो गोत्र होते हैं। फिर अंतराय कर्म, पांच प्रकार का अंतराय, विघ्न करणम अंतराय, जो हमारे कार्य में विघ्न करे, कोई भी कार्य हो सकता है, जो हमारे कार्य में विघ्न करे वो अंतराय कर्म है। हम दान देने की इच्छा रखते हैं लेकिन दान नहीं दे पाते हैं तो दानांतराय कर्म हो। हम कोई चीज पाने की इच्छा रखते हैं नहीं पा पाते हैं तो वो लाभांतराय कर्म हो गया। हम किसी चीज को अपने सेवन करना चाहते हैं, खाने पीने की चीजें, लेकिन रोग हो गया नहीं सेवन कर पाते हैं, इच्छा होते हुए भी नहीं कर पाना, ये हो गया भोगांतराय। हम वस्त्र इत्यादि जो उपभोग की सामग्री जो बार बार उपयोग में आए वो उपभोग की सामग्री कहलाती, जो एक बार उपयोग में आए वो भोग सामग्री कहलाती, भोजन इत्यादि को भोग सामग्री कहेंगे और वस्त्र इत्यादि को उपभोग सामग्री, तो उस सामग्री में बाधक बनने वाला कर्म उपभोग अंतराय कर्म है। और एक होता है हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन बाधक बन जाता है तो हमारे वीर अंतराय कहलाता है, हमारी शक्ति को रोक देता है। हम बहुत कुछ कई बार लोग कहते हैं हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारा बहुत मन करता है कि ये भी करें लेकिन बस फिर हमारे मन में पता नहीं क्या होता, हम कुछ होते हमारी शक्ति को रोक लेने वाला कर्म, बाधा देने वाला कर्म वीर। इस तरह से जो है अंतराय का एक बचा सबसे बड़ा जो है नाम, नाम कर्म की फैमिली बहुत बड़ी है, 93 उसके फिर और उस पे पूरा का पूरा अपना शरीर टिका हुआ है। एक एक चीज मैंने आश्चर्य ये होता है कि किस तरह से जैनाचार्यों ने और बॉडी कंस्ट्रक्ट हुई होगी, हर एक गति में अलग अलग कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, ये सारा संरचना शरीर की संरचना देने वाला कर्म नाम कर्म है। हाँ, गति नाम कर्म है, जिस गति में जीव जाएगा उस गति के अनुसार उसे ले जाने वाला, उस गति में ले जाने वाला गति नाम कर्म। कौन सी गति में जाना है ये हम डिसाइड करेंगे, तो जिस गति में जाना है उस गति के अनुरूप हमारा शरीर बनेगा। तो चार गतियां हैं, मनुष्य गति है, तिरंज गति है, देव गति है और नरक गति है। फिर हमारी जाति डिसाइड करेगा वो कर्म, जाति नाम कर्म है कि एक इंद्री में होना है कि दो इंद्री में होना है कि तीन इंद्री, ये जातियां हैं, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री, इसको वैसा जाति नहीं मानना कि कुल और जाति जो अपन करते हैं, जाति का अर्थ है एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री इत्यादि जातियों में उत्पन्न करने वाला एक कर्म। एक कर्म हमारा है जो हमारे शरीर की संरचना, कौन सा वाला शरीर बनना है, औदारिक शरीर बनना है, औदारिक मतलब स्थूल शरीर विजिबल, एक वैक्रिक शरीर जिससे कि नाना रूप बनाए जा सके, वो देवनारकी के होता है, तो वैक्रिक शरीर बनना है कि औदारिक बनना है। फिर आहारक शरीर जो कि विशेष विधिधारी मुनि के होता है वो शरीर बनाने वाला एक कर्म अलग है। फिर तैजस शरीर हमारे भीतर जो आभा देने वाला शरीर है वो तैजस शरीर हमारे कर्मों का भी एक, आठों कर्मों का मिलकर के एक बहुत सूक्ष्म शरीर है वो कार्मण शरीर कहलाता। इन पांचों शरीरों को बनाने वाला भी एक नाम कर्म है, ये हो गया शरीर नाम कर्म। फिर होता है अंगोपांग, अब शरीर में अंगोपांग कैसे बनेंगे, उंगलियां कितनी बननी है, किस तरह की साइज शेप क्या रहेगी, पूरा शरीर में किस तरह से अंग बनना है, ये अंग कहलाएंगे ये उपांग कहलाएंगे। तो ये सब जो है डिसाइड होता है कि आँख कैसी बननी है, किस कलर की बननी है और किस तरह की, एक एक चीज ये डिसाइड करता है अंगोपांग बनाने वाला। और तीनों शरीरों के अंगोपांग अलग बनेंगे, व्यक्ति के अलग बनेंगे, औदारिक के अलग बनेंगे और आँख शरीर के अलग बनेंगे। फिर एक निर्माण कर्म होता है फॉर्मेशन, जिस कर्म के उपांग, जिस कर्म के उदय से हमारे अंगोपांग ठीक ठीक जगह बनते हैं, सिमेट्रिकल बनते हैं, अगर वो कर्म का उदय ना हो तो कहीं के कहीं भी अंगोपांग बन जाएंगे, तो वो कर्म निर्माण नाम का नाम कर्म है, जो हमारे शरीर में कहां कौन सा अंग निर्मित होना है, कौन सा उपांग कैसा बनना है। और एक बंधन नाम का कर्म है जो यूनियन इसको बोलते हैं, जो कि शरीर में जो पुद्गल है उनके परस्पर इतना कॉम्पैक्ट कर देता है कि बाहर की चीज भीतर नहीं जा सकती और भीतर की चीज बाहर नहीं आ सकती, ये कहलाता, इसको बंधन नाम कर्म का उदय कहेंगे। इसकी वजह से ये पोरोसिटी है, इसमें से बाहर आना है तो कौन सी, ब्लड नहीं आ सकता लेकिन पसीना आ जाएगा, इसके भीतर क्या जाना है तो कितनी, ये करने वाला एक अलग कर्म है वो बंधन नाम कर्म। संघात नाम कर्म कहलाता है, जिसमें कि आपके सेमी परवेबल मेम्ब्रेन जो अपने भीतर बनती है वो बनाने वाला कर्म कहलाता है संघात। आपकी भाषा में ऐसे ही कह रहा हूँ ताकि ईजी रहे आपके लिए, परिभाषाएं तो इसमें लिख लेना। फिर हमारा स्ट्रक्चर बॉडी का किस तरह का बनेगा, सुडोल बनेगा कि बिडोल बनेगा, छह तरह का स्ट्रक्चर बनता है। समचतुरस्थ संस्थान कहलाता है वो एकदम प्रोपोर्शनेट जिसको बोलेंगे। और फिर एक होता है नेग्रोथ परिमंडल, नाम इनका बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन अपर पार्ट जो है वो वेल डेवलप्ड रहेगा और लोअर पार्ट जो है वो इल डेवलप्ड रहेगा। पैर बड़े दुबले पतले हो गए हैं और बाकी भारी शरीर हो गया, ऊपर वाला जो है शरीर भारी भरकम हो गया, जैसे बड़ का पेड़ होता है उस तरह का शरीर भी बन जाता है। स्वाति संस्थान में ऊपर वाला पोर्शन जो है बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा सिर है लेकिन पैर जो है इतने बड़े बड़े बन गए, फील पैर हो गए, हाथी के जैसे पैर हो गए, तो वो क्या है, वो स्वासी संस्थान कहलाए, कुब्जक संस्थान पीछे जो है किसी के कुबड़ निकल आया है तो ये संस्थान मिलेगा। ये भी हमारे कर्मों पे निर्भर करता, बामन संस्थान छोटा सा शरीर मिल गया, कुंडक संस्थान टेढ़ा मेढ़ा, कोई शेप नहीं है उसका, अट्रेंडम कुछ भी तरह का, जिस छह तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है बॉडी का, ये निर्धारित करेगा कर्म। उसके अलावा ज्वाइंट्स, हमारे जो ये ज्वाइंट्स हैं इनमें कितनी पावर रहेगी, हम कितना, तो इसके अलग अलग छह प्रकार से ज्वाइंट्स होंगे, वज्र वृषभ नाराज सहनन रहेगा, या कि आपका वज्र नाराज है, या कि नाराज है, या अर्ध नाराज है, कीलक है, या कि असंप्राप्त सपाटी का, ये छह जो है सहनन होते हैं, मतलब ऐसा ये जो ये जो ज्वाइंट्स हैं, इन ज्वाइंट्स में वज्र तो कहलाता है शक्तिशाली बहुत, और वृषभ मतलब कहलाता है इसके ऊपर एक वेस्टर्न होता है दो हड्डियों के ऊपर, और हड्डियां भी वज्र की, नाराज मतलब होता है कील, और सहनन मतलब हड्डी की संधियां, इस तरह ये वज्र वृषभ नाराज सहनन, तो वज्र की तो है हड्डियां, और इसके ऊपर एक कवर जो इस हड्डी को जोड़ने वाला है वो भी वज्र का है, उसमें जो कील पड़ी हुई है वो भी वज्र की है, जब ऐसा सहनन मिलता है तभी उससे मुक्ति होती है, अन्यथा नहीं, ये वज्र वृषभ नाराज सहनन मिलता है तब मुक्ति के योग ध्यान हो सकता है। फिर उससे छोटा हल्का संस्थान है वज्र नाराज, जिसमें सिर्फ जो कीले हैं वो वज्र की होती है, ऊपर वेस्टर्न नहीं होता है वज्र का, तो वो वज्र नाराज, जिसमें नाराज सहनन है, जिसमें वज्र की ना हड्डियां हैं ना कीले हैं, मात्र ऐसे ही जुड़ा हुआ है, तो वो नाराज सहन, अर्ध नाराज जुड़ा तो है लेकिन आधा जुड़ा हुआ है, हड्डियों के बीच में इस तरह से जॉइंट आधे फंसे हुए हैं, ये इस तरह का एक सहनन है अर्ध नाराज। फिर एक होता कीलक, जिसमें है तो लेकिन अपने आप में फ्यूज है, मतलब वो थोड़ी सी ऐसे हो जाए तो ब्रेक हो गई हड्डी, इस तरह का अपन लोगों का आज इसी तरह का है, ऐसे फंसे हुए हड्डियां, आप पढ़ें तो इस तरह से दो एक दूसरे में और घूमती रहती, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए तो खत्म, ये कीलित कीलित सहनन है, मतलब वेरी वीक जॉइंट। और फिर असंप्राप्त, अब इसको क्या कहें, क्वाइट वीक, जैसे सर्प होता है उसको जरा सा झटका लग गया तब टूट फूट जाएगा, क्योंकि हड्डियां उसकी सिर्फ नसों से जुड़ी हुई रहती है, वो असंप्राप्त सरपाटी का सहनन कहलाता है, ये छवों सहनन जो है नामकरण के द्वारा अपन को इतना माइन्यूट मतलब दिया है, जैनिस में सब कर्म दिए हैं हमें, जैसा शरीर मिला है वो हमने अपने कर्मों की वजह से बांधा है ये मान के चलिएगा, किसी दूसरे ने हमें नहीं दिया है, जैसा शरीर पाया हमने। फिर हमारा टच कैसा होगा शरीर का, सॉफ्ट होगा, हार्ड होगा, या कि के आठ प्रकार का टच होता है, तो बॉडी का टच कैसा होगा ये डिसाइड करेगा स्पर्श नामकरण। बॉडी का टेस्ट कैसा होगा ये डिसाइड करेगा, बॉडी की गंध कैसी होगी ये डिसाइड करेगा गंध नामकरण, और जो है कलर कैसा होगा ये भी एक कर्म है जो कि डिसाइड करेगा बॉडी के।
ये सुन नहीं होगा गंध वगैरह बॉडी में, गंध कैसे,
बॉडी में अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग होती, तीर्थंकर की गंध एक योजन तक फैलती है, तो वो स्पेशल अपनी गंध अपन को मालूम नहीं पड़ती है कि किस तरह की, अपन कभी कोशिश नहीं करते, हर शरीर की एक निश्चित गंध होती है, मधुमक्खी जो आप उनको देखिएगा बीज क्वीन बीज होती है, जो रानी मधुमक्खी होती है उसकी एक स्पेशल गंध होती है हर रानी मधुमक्खी की, और हर मधुमक्खी उस गंध को जानती है और अपने छत्ते में रहती है, हर शरीर की कोई ना कोई, लेकिन अपन नहीं पहचान पाते, गायें पहचानती हैं और वो अपने उधर आ जाती हैं, उनको पहचान जाती, तो होती मतलब ये मान के चलिएगा, रस भी होता है गंध भी वर्ण भी सब होती, अनुकूल भी माइग्रेटरी फॉर्म, मतलब जब हम ट्रांस माइग्रेशन करेंगे तो एक कर्म हमारे साथ तय है कि वो हमें ले जाएगा, हमारे पूर्व के शेप को बना करके रखेगा और अगली गति तक पहुंचाने में मदद करेगा ट्रांस माइग्रेशन के लिए, जब एक गति से दूसरी गति में जीव जाता है तो बीच में जिस कर्म का उदय रहता है उसको अनुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं, माइग्रेटरी फॉर्म। एक अगुरु नाम का अगुरु लघु नाम कर्म होता है, जो हमारे शरीर को ना इतना भारी बनाता है कि हम उठ ही ना पाए, ना हमारे शरीर को इतना हल्का बनाता है कि हम उड़ जाए ऊपर, ये अगुरु लघु, न गुरु न लघु, इस तरह एक अगुरु नाम कर्म अपने उदय में है, नहीं तो कोई कोई जीव है जो कि ऐसे थोड़े फूंक दो तो उड़ गए बेचारे, उनको तो वो कर्म का उदय नहीं है, अपने को है, और ऐसे भारी भी नहीं, कई लोग बहुत भारी हो जाते हैं उनको दो लोग उठाने के लिए चाहिए, उनका नाम कर्म का उदय है, मानिएगा। तो उपघात, एक उपघात नाम कर्म होता है जिसके वजह से शरीर के अवयव ऐसे हो जाते हैं कि अपने लिए बाधा बन जाते हैं, अपने पैर के नाखून बढ़ जाए तो अपने ही यहाँ पर चलते समय टकरा जाएंगे, अपने ही घात करने में सहायक हो जाते हैं, अपने लोगों को तो कम रहते हैं लेकिन बारह सिंगा है उसके, अपने सींग ही उसको झाड़ी में फंस जाते हैं, तो उन सींगों को बचाने के लिए वहीं फंसा रह जाता है, मर जाता, उसके उपघात नाम कर्म का उदय है, ऐसा ऐसे अंगोपांग मिल गए जिससे उसका अपना स्वयं का घात हो जाता है। एक परघात नाम कर्म है कि ऐसे अंगोपांग मिल जाते हैं जैसे सिंह को कि दूसरे के घात करने में सहायक होते हैं, तो परघात करने वाले नामकरण के उदय से शरीर में वैसा मिल जाता है। एक आतप नाम कर्म का उदय होता है, जिस मूल में तो ठंडा होता है लेकिन उसका प्रकाश उष्ण होता। यह आतप नाम कर्म विशेष रूप से एक इंद्रिय जीव को होता, पृथ्वी गाय को, जैसे कि सूर्य को है आतप नाम कर्म का उदय पृथ्वी गाय जीव को। तो उसमें से मूल में तो ठंडा है सूर्य, लेकिन उसकी आभा जो निकलती है वो गर्म है। और एक उद्योत नाम कर्म है जो जुगनू इत्यादि में या कि चंद्रमा में होता है, जो मूल में भी ठंडा है और उसकी जो रेज है वो भी ठंडी होती है। ये भी नाम कर्म के उदय से ही होता पृथ्वी गाय जीव में। उद्योत उच्छ्वास जिसपे जिससे हम रेस्पिरेशन लेते हैं, जिससे हमारा श्वास उच्छ्वास चलता है, वो भी एक नाम कर्म है। विहायो गति जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, विहाय मतलब आकाश, अपन जब भी कदम उठाते हैं तो एक आकाश में रखते हैं, फिर तो दूसरा तो सिर्फ सहारे के लिए पृथ्वी पर टिका है, पर चलते हैं अपन आकाश में, तो कैसी गति होना चाहिए? हाथी के समान सुंदर गति होगी या ऊंट के समान गति होगी? प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों प्रकार की गति हमारी डिसाइड करेगा कर्म, ये विहायो गति नाम कर्म करेगा। प्रत्येक शरीर हमारे इतने बड़े शरीर के लिए एक शरीर हमारे हमें मिलने वाला है, या कि एक ही शरीर अनंत जीवों को मिलेगा, वो कहलाता है साधारण शरीर नाम कर्म। कि वनस्पति वगैरह को साधारण शरीर नाम कर्म का उदय है कि उनको एक ही शरीर मिला है लेकिन कई जीवों को, जैसे कि एक कमरा 100 लोगों को मिल जाए है? और एक कमरा एक व्यक्ति को मिले, एक शरीर एक व्यक्ति एक जीव को मिलता है, ये प्रत्येक नामकर्म। और एक हजारों जीव के लिए एक शरीर मिल जाए वो साधारण नामकर्म। त्रस नामकर्म जिससे मोबिलिटी मिलती है, जब हम अपने को सर्वाइव कर पाते हैं, भग सकते हैं, तो वो त्रस नामकर्म है। स्थावर हम खड़े रह जाते हैं अपनी जगह पर, जो है कहीं हिल डुल भी नहीं सकते पेड़ की तरह, जो तो वो स्थावर नामकर्म है। फिर सुभग नामकर्म जिस कर्म के उदय से हम दूसरे को अच्छे लगते हैं, वो सुभग नामकर्म, जिसकी वजह से मेजॉरिटी के लिए बुरे लगते हैं वो दुर्भाग नाम, जिसको दुर्भाग कहते हैं, सौभाग कहते हैं, वो भी नाम कर्म है। सुस्वर नाम कर्म जिसकी वजह से हमें मधुर कंठ मिलता है और जिसकी वजह से हमारी वॉइस जो है वो ठीक नहीं होती, कर्कश होती है, वो दुस्वर नाम कर्म। जिसकी वजह से हमारे शरीर के अवयव सुंदर होते हैं वो शुभ नाम कर्म, और जिसकी वजह से सुंदर नहीं होते अशुभ नाम कर्म कहलाता है। जिसकी वजह से हमारा शरीर सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, जो दूसरे को न बाधा देता है न दूसरे के द्वारा बाधित होता है, ऐसा सूक्ष्म नाम कर्म अपन को नहीं मिला, वो छोटे जीवों को मिला। अपने को स्थूल नाम कर्म है, तो अपना शरीर दूसरे को बाधक बनता है और दूसरे से अपन भी बाधा को प्राप्त होते हैं, स्थूल नाम कर्म। एक पर्याप्ति नाम कर्म होता है जिसकी वजह से हम अपनी पूरी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले जो 6 शक्तियां प्राप्त करते हैं, जिसमें हम आहार पर्याप्ति, फिर शरीर पर्याप्ति, फिर ये इनको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में टच कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें जो है एक एक पूरी क्लास हो जाएगी इसमें। हाँ, तो एक सिर्फ जान लीजिएगा, इसमें पूरा है, लिख लीजिएगा, कभी फिर पढ़ेंगे डिटेल। तो एक होती है सबसे पहले आहार पर्याप्ति होती, फिर शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति होती, फिर भाषा पर्याप्ति होती, फिर मन पर्याप्ति, उसके पहले वचन श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पहले हो जाती, फिर उसके बाद भाषा होती, फिर उसके बाद मन होती, ऐसी 6 पर्याप्तियाँ। मतलब पर्याप्ति मतलब हमें अपने शरीर को में फंक्शन लाने के लिए जो शक्ति प्राप्त होती वो कहलाती। हम बॉडी को मेटाबॉलिज्म करने के लिए जो मटेरियल इकट्ठा करेंगे वो आहार पर्याप्ति कहलाएगी, फिर अपनी इंद्रिय कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैटर इकट्ठा करेंगे, फिर अपने शरीर के फॉर्मेशन के लिए करेंगे, फिर बोलने के लिए भी हमें चाहिए, भाषा बनाने के लिए, सोचने के लिए भी हमें मैटर चाहिए, हमें श्वासोच्छ्वास की मैटर चाहिए, ये सब जो कलेक्शन होता है मैटर का और कंस्ट्रक्शन होता है वो कहलाती पर्याप्ति आपकी भाषा में। ये पर्याप्ति नामकरण होता है अलग से। अपर्याप्ति नाम कर्म होता है जिसमें जीव अपने कोई शक्ति नहीं प्राप्त होती और जन्म लेते ही साथ मर जाता, वो पूरे नहीं कर पाता, बॉडी कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो पाती, आधी अधूरी बनती है और जीव नष्ट हो जाता। अपर्याप्त स्थिर नाम कर्म जिसकी वजह से बात पित्त कफ स्थिर रहते हैं, खूब भीषण ठंडी भी पड़ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्मी पड़ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, स्थिर नाम कर्म का होता है जिसको रहता। वो जिसके अस्थिर नाम कर्म का जरा सी ठंडी हवा लगी ठंड लग गई, निमोनिया हो गई, अस्थिर नाम। हाँ, तो ये है अपने नामकर्म सारे अपने शरीर के डिसाइड करने वाले, स्थिर अस्थिर नामकर्म। फिर लक्ष्य हमारे बॉडी का एक आदे जिसको अपन क्या बोलेंगे, रेडियंस कहें उसको, यही कहेंगे लक्ष्य कहेंगे, बॉडी की एक चमक होती शाइनिंग, और जिसके अनादे नामकर्म का होगा तो उसके शाइनिंग नहीं होगी, यश कीर्ति ग्लोरी, जिसकी वजह से हमें फेम मिलता है, यश कीर्ति, जिसकी वजह से हमारे ऊपर अखबार लगाए जाते हैं, अयश कीर्ति। तीर्थंकर नाम कर्म है, ये सबसे श्रेष्ठ नाम कर्म माना जाता है, तीर्थंकर नाम कर्म, जो कि बहुत विशिष्ट लोग जो है इस कर्म का वंश करते हैं। प्राणी मात्र के कल्याण की जिसको भावना होती है और जो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखता है उस व्यक्ति के लिए ये 24 लोगों के लिए बनता है, और फिर जब उदय में आता है थोड़ा फाट बढ़ रहता, तीर्थंकर नाम कर्म की वजह से ही तीर्थंकर बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ नाम कर्म है अगर तो तीर्थंकर नाम कर्म है, 93 प्रकृति में। इस तरह से ये नाम कर्म
कंप्लीट है, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव हो गया मुझे तो।
इसको लिख लीजिएगा, देख लीजिए, बार बार पढ़ेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे, तो फिर और डिटेल में अपन इस पर बैठ करके करेंगे चर्चा। आज जो है अब शेष रह गया है, अभी
मिनट
अभी
नहीं पूछना, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं पूछना, अभी एकदम अभी नहीं पूछना। आज और कल दो दिन सब लोग चुपचाप बैठेंगे, सिर्फ जो लोग पढ़ रहे हैं वो पूछेंगे। आज हमें जैनाचार पढ़ना है, ऐसे उपनियम या ऐसी संहिता जिसके द्वारा हम जैन धर्म और दर्शन को अपने जीवन में जानते, देखते और अनुभव करते हैं, वो सब जैनाचार। किसी किसी ने, इस बिटिया ने जैनाचारी लिखा है, जैनाचारी में मैंने सुधार दिया, जैनाचार। आचार कहलाता ना आचरण, तो जैनाचार। जैन धर्म में जो आचरण बताया गया है वो दो तरह का बताया, एक श्रमण का आचरण श्रमणाचार, एक श्रावक का आचरण श्रावकाचार। इस तरह से जैनाचार दो भागों में विभाजित कर ले, श्रमणाचार और श्रावकाचार। श्रावकाचार बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है सबसे पहले कोई भी आवे साधु के पास या त्यागी वृत्ति के पास, उसे ऊंची चीज दिखाना, फिर जब उसकी शक्ति ना हो तब फिर नीची वाली दिखाना। इसलिए पहले आपको श्रमणाचार के बारे में बताऊंगा, जो आपका श्रावकाचार है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि श्रमणाचार पढ़ने के बाद अगर आपकी शक्ति नहीं है तो फिर श्रावकाचार को तो पालन करिए, पर कोशिश तो यही है कि पहले श्रमणाचार हम उस आचरण को प्राप्त कर सकें। अब श्रमणाचार में श्रमण शब्द का अर्थ क्या, श्रम शब्द से बना हुआ है श्रवण, श्रम से नहीं बना। कुछ लोग श्रम से बोलते हैं कि जो श्रम करे वो श्रवण है, ये जैन धर्म की परिभाषा नहीं। जैन धर्म में श्रमण शब्द बना है श्रम से। सम का मतलब होता है इक्वलिटी, इक्वलिटी समता, समतावान जो है वो श्रम है। जो राग द्वेष से परे है वही तो समतावान है, पर वही श्रम है। उसी को साधु कहते हैं, उसी को मुनि कहते हैं, उसी को भलंद कहते हैं, उसी को भट्टारक कहते हैं, उसी को वर्णी कहते हैं, बीसों नाम है। उसी को कहते हैं जो राग द्वेष से मुक्त है एक्चुअली, पर वो अपन ने उपाधि की तरह उपयोग करने लगे हैं, शुभ लग्जी को वर्णी कहने लगे, लग्जी को वर्णी कहने लगे, वैसा नहीं है, वर्णी इसको कहें। तो श्रमण जो है, जो समतावान है वो श्रमण है। अब उस श्रमण का क्या आचरण है, तो वो कम से कम पांच प्रकार के महाव्रतों का पालन है, एक चीज। वो पांच समितियों का पालन है, वो पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए पांच इंद्रिय निरोध करें, वो प्रतिदिन जो आवश्यक कार्य है उनको छह आवश्यक कार्यों को करेगा और उसके साथ और विशेष गुण होंगे, ऐसे मिला करके पूरे 28 मूल गुणों का जो पालन करेगा वो श्रवण कहते हैं। इन 28 मूल गुणों को अपन जान लें कि वही श्रम, वही साधु के हैं, उसी को अपन श्रवणाचार कहेंगे। और दूसरी तरह से इसको व्याख्या किया जाता है कि जो 13 प्रकार के चारित्र का पालन करेगा उसे श्रवण कहते हैं। कहीं कहीं पर ऐसी बात भी आती है, वो 13 प्रकार का चारित्र कौन सा है, कहीं कोई पूछे कि 13 प्रकार का चारित्र क्या है, तो पांच महाव्रत, पांच समितियां, तीन गुप्तियां, ये भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन श्रवण के लिए गुप्ति अनिवार्य नहीं है, वो श्रवण का तप में शामिल है। 12 प्रकार का तप और तीन गुप्तियां, ये उसके उत्तर गुण है, श्रवण के मूल गुण जिसको अपन कहते हैं, जो उसे जरूर से जरूर पालन करना है, वो है 28, जिसमें पांच महाव्रत। पांच महाव्रत तो समझ में आते हैं, ऐसे व्रत जो हमें महान बना देते हैं वे महाव्रत कहलाते हैं, या ऐसे व्रत जो महान आत्माएं ग्रहण करती हैं महाव्रत कहलाते हैं। जिनसे हम महान होते हैं या जो महान आत्माओं के द्वारा ग्रहण किए गए हैं वे महाव्रत कहलाते हैं। व्रत किसे कहेंगे, हिंसा नृतस्तेय ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। मैंने हिंसा से, झूठ से, चोरी से, खुशी से और परिग्रह से हम जब फुली डिटैच हो जाते हैं वो कहलाएगा महाव्रत, और जब हम पार्शियली डिटैच होते हैं इनसे तो वो कहलाएगा अनुव्रत। उसकी चर्चा अपन श्रावक के आचरण में करेंगे, पर जो पांच इन व्रतों का पूरी तरह पालन करते हैं वो महाव्रती कहलाते हैं। ये पांच महाव्रत, अहिंसा का पालन करना, झूठ नहीं बोलना, सत्य का पालन करना, अचोरी का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अखंड और अपरिग्रह। दिल तुष्मात्र की परिग्रह नहीं रखेंगे, परिग्रह का मतलब है मूर्छा, किस चीज से भी जरा भी मूर्छा नहीं होगी। कोई भी सामग्री होगी, अपना पिछी कमंडलू भी होगा, उससे भी मूर्छा नहीं होनी चाहिए। मूषा का मतलब है उससे ममत्व नहीं होगा। कोई उठा के ले जाता है तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि मेरे उपयोग में आती है आपकी जैसी इच्छा। कोई लेके चला जाएगा तो शांत बैठ जाएंगे, उसके लिए चेष्टा नहीं करेंगे। अगर अचानक उड़ करके चली गई है, सात हाथ दूर पड़ी है, तो उसे उठा सकेंगे उठता चल के बिना पीछे के, अन्यथा एक कदम भी बिना पीछे के नहीं बढ़ेंगे। ये इस तरह अपरिग्रह होता है, जरा भी मूर्छा नहीं होती। ये पांच महाव्रत हो गए, पांच समितियां और जान लें, है ना। पांच इंद्रिय निरोध तो बहुत वो है कि अपने इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करना, आंख से ठीक देखना, नाक से राग द्वेष नहीं करना कि गंध है कि दुर्गंध है, वो तो आएगी तो कि दुर्गंध है कि सुगंध है, पर उसके बीच में कि ये हटा दी जाए और ये अच्छी आ रही है तो लाओ जरा अगरबत्ती लगा दो मेरे यहाँ पर, अच्छी सुगंध गंध कर दो, ऐसा नहीं करें। ये इंद्रिय विजय कहलाएगा। ऐसा नहीं कि आंख फोड़ लेंगे तो कुछ देखेंगे नहीं तो अच्छा रहेगा, विजय जीत लिया हमने, नहीं, सब कुछ देखेंगे लेकिन देखने के बाद भी राग द्वेष नहीं करेंगे। पांचों इंद्रियों के विषय सामने पड़े होने पर भी उनकी ग्रहण करने की आकांक्षा नहीं होना, ये इंद्रिय विजय है। और समिति होती, समिति मतलब सावधानी पूर्वक क्रिया करने का नाम है, सम्यक इति, भली प्रकार से सारी क्रियाएं। कितनी क्रिया करता है व्यक्ति, बोलता है तो कहते भाषा समिति पूर्वक बोलता, चलता है इरिया समिति पूर्वक चलना, खाता पीता है ईष्णा समिति पूर्वक खाना पीना, उठाएगा रखेगा सामान तो कहते आदान निक्षेपण समिति का पालन करना, निष्ठीवन इत्यादि मल मूत्र इत्यादि विसर्जन करेगा अनिवार्य है। तो उसमें प्रतिष्ठापक समिति, पांच समितियां दिन भर के कार्य में हर जगह साव, चलने से पहले चार हाथ आगे जमीन दिन के प्रकाश में देख करके प्रासूत जमीन पर चलना इरिया समिति कहलाती है। भोजन करते समय विभिन्न प्रकार के जो बाल या जीव इत्यादि हैं उनको बचा करके या उनके आ जाने पर भोजन का त्याग करके 32 प्रकार के अंतराय को टाल करके भोजन ग्रहण करना देख सोच के ऐष्णा समिति कहलाती। बोलते समय हित मित और प्रिय बोलना ये भाषा समिति कहलाती। आज लिखवा नहीं रहा हूँ, लिखवा दूंगा बाद में, है ना, इसलिए उसमें आज सिर्फ टच कर रहा हूँ, लोग लिखने में लग जाएंगे तो समझ नहीं आए। हित मित प्रिय बोलना ये भाषा समिति हो गई। किताब को उठाते रखते समय देख करके देखभाल के कि किसी जीव के ऊपर तो नहीं रखी जा रही, अगर कहीं अंदेशा हो तो बैठते समय पीछे से परिमार्जन करके फिर बैठना, किसी दूसरी जगह अपने शरीर को यहाँ से बाहर ले जाना है, छाया से धूप में लाना है तो पूरे शरीर को परिमार्जित करेंगे, यादा निक्षेपण, अपने शरीर को रखना उठाना, चीजों को रखना उठाना, सब में सावधानी, जीव राशि का घात ना हो जाए, यादा निक्षेपण। निष्ठीवन जाएंगे थूकने के लिए जाएंगे या मल मूत्र का विसर्जन करेंगे, उसमें भी प्रासुक स्थान होना चाहिए, जीव जंतु ना हो ऐसी जगह पर विसर्जन करेंगे, ये कहलाती समिति। पांच प्रकार की समितियां एक साधु को देखना पड़ती, पांच इंद्रिय निरोध और पांच महाव्रत, 15 हो गए, फिर बाकी जो है 28 ये जैनाचार में शामिल होगा। क्यों करते हैं सवाल ये भूल नहीं जाइए, जैनाचार किस पे बेस्ड है, जिसमें हम जैन धर्म और दर्शन को अपने जीवन में जानते देखते अनुभव करते। हमारा दर्शन क्या है कि शरीर अलग आत्मा अलग है, मैं इन दोनों को अलग अलग सेपरेशन करने के लिए, शरीर और आत्मा के बीच की भेद रेखा जानने के लिए इस आचरण को स्वीकार कर रहा हूँ। इस आचरण का मेरा मकसद वीतरागता है, इस आचरण का मेरा मकसद भेद विज्ञान है, उसकी भूमि पर हमारा पूरा आचरण टंगा हुआ है। कोई ये समझे कि क्यों पांचों इंद्रियों का निरोध कर रहा है, जब मिली है तो उनसे अच्छा अच्छा ग्रहण कर लो, तो कहते नहीं, इससे जो है हम और कर्मों से बंधेंगे, जबकि हमें तो डिटैच होने की प्रक्रिया करनी है, हमें तो कर्म से मुक्त होने की प्रक्रिया करनी है, इसलिए हम ऐसा ना करेंगे, हम बहुत संभल के जीवन जिएंगे, जिएंगे लेकिन बहुत संभल के जिएंगे, ताकि कर्म कम बने, निर्जरा ज्यादा हो, ताकि हमारी आत्मा निरंतर पवित्र, हमें भेद विज्ञान और वीतरागता प्राप्त करनी, इसलिए ये आचरण स्वीकार किया। इस तरह लिखेंगे अपन, पहले पूरा पढ़ेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे। Thank you.